समय सारण शीलन भाग दो प्रश्न नंबर 230 के गुणोत्तरमा छंद लाए हैं। एव मुक्त्वा न पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल द्युत शांत चित्त तयेव साक्षात अमृतम पिबंती। इस पर चर्चा करते हुए कल अपन ने एक बात कही थी कि अमृतंदाचार्य को स्वरूप गुप्त ये उपाधि बहुत पसंद है। कोई दे न दे क्या फर्क पड़ता है, क्या दूसरों के द्वारा दी गई उपाधियां तो उपाधियां हैं। इस छंद में वे इनडायरेक्ट वे में अपना नाम भी रख देते हैं, जो है साक्षात अमृतम पिबंती। तो अमृतम में अमृत चंद्राचार्य आ गए और स्वरूप गुप्त हो ही गया। तो अंत का छंद है ना, उसमें ही लिखा ना स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का, इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, है? माने जब वो ये विशेषण को अपने लिए लगाने में बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। ये इसका जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं, क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। एक तो इस बात यह है कि एव मुक्त्वा नये पक्षपातम, इन नयों को नहीं छुड़ाया है, नयों के पक्षपात को छुड़ाया है, है ना। और पक्षपात माने विकल्प भेद, समझे ना। पक्षपात माने कोई जो जैसा पक्षपात आप दुनिया में समझते हो ना, फिर शिकायत करते हैं कि ना मेरे साथ ऐसा पक्षपात हो गया। सब सुमित जी के सामने प्रचन में कह रहे थे ना आपसे, कहा आपके साथ पक्षपात कैसे हो सकता है, क्योंकि जब सब कुछ आपका आपके ही हाथ में है उपादान की अपेक्षा, और निमित्त आपके कर्म का उदय है जो आपने ही बांधा था। ये दो इतने बलवान कारण विद्यमान हैं तो सामने वाला तो बहुत दूर का निमित्त है, हैं? अंतरंग निमित्त और उपादान, क्यों ये दो तो अपना ही है ना बिल्कुल, जिसमें कोई किसी को बदल नहीं सकता। माने ना तो हमारे आत्मा को बदल सकता है और ना हमारे कर्म वाले निमित्त को बदल सकता है, है ना। वो अपन ने समय सार की गाथाएं लिखी ना, पंडाधिकारी का पद्यानुवाद में लिखा ना कि निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे खकोगे जब आयु हर नहीं सके, क्योंकि उसके लिए आयु का हरण अपहरण करना पड़ेगा ना। हम तो तुम्हें गोली मार देंगे तो तुम नौ कर्म में मारोगे, आयु कर्म को तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे निमित्त को भी तुम नहीं बदल सकते हो, वो कर्म जब हमने बांधे थे तब भी तुमने कुछ नहीं किया था, हमने जैसे भाव किए थे उनके अनुसार ही बदले थे। अभी आप कह सकते हो कि नहीं नहीं वो होते हैं ना, संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, मेन में ज्यादा उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये तो नक्की है ना कि वो तो तुम्हारे भावों के अनुसार ही होगा कि सामने वाला कर देगा। अपनी समस्या तो ये है कि सामने वाला कुछ नहीं करता है ना, वो निमित्त बिल्कुल असक्त है। मैं नपुंसक नहीं कहना चाहता हूं, आप समझे ना, तो एकदम असक्त, आप में कुछ भी करने में एकदम असक्त है। एक तो नए के पक्षपात को छुड़ाया है, नए को नहीं, नए के विषय को भी नहीं, पक्षपात को छुड़ाया है, और स्वरूप में गुप्त होकर निवास करने के लिए कहा है। गुप्त का मतलब होता है اور آپ جو گپتکار سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. میری بات گپت رہنے دینا, کسی کو پتہ نہیں چل جائے, ایسا تو کوئی گپت کبھی دنیا میں آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات کسی کو پتہ نہ چل جائے, ہے نا. کہ ہم محسن نکالیں گے تبھی تو وہ کسی کو پتہ چلے گی نا, ہم زبان پہ ہی نہیں لائیں گے تو پھر کہاں رکھو گے, من ہی میں رکھیں گے تو من پرے گیانی کو پتہ چل جائے گا, کیول گیانی کو پتہ چل جائے گا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیسے سمبھو ہے؟ تو یہ گپت کہاں رہی ہے؟ گپت مانے چھپانا نہیں. ہم گپت کا ارتھ ابھی چھپانا سمجھتے ہیں, اور یہاں گپت کا ارتھ ہے سرکشت. سروپ میں گپت ہیں, میں نے سروپ میں سرکشت ہیں, سروپ میں چھپے ہیں. کوئی انہیں ڈر لگ رہا ہو کسی کو کبھی جا کے کسی سے چھپتے پھریں گے؟ سمجھے نا, سروپ میں گپت ہے نا. دوسری بات, اور نواس کرتے ہیں تو نواس کا بھی ایسا اپنے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جے پور میں نواس کرتے ہیں, پھر پاپو نگر میں کرتے ہیں, تو ایسا ویسا نواس نہیں ہے. ان کی سدھا میں یہ ہے کہ میں میرا سروپ یہ ہے, اور جو میرا سروپ ہے وہی میں ہوں. اس کا نام ہے سروپ میں نواس کرنا, سدھا کی اپیکشا. سمجھ گئے نا؟ اکلنگ دیو نے راج وارتک میں بڑی مذاق اڑائی ہے. کہاں کہتے کہ آکاش میں, اب آکاش میں جو بولتے نا, آکاش میں چھ دریہ رہتے ہیں تو وہ کہتے سوات منی اوتشت مانتواد. ارے ہر وستو اپنے میں رہتی ہے, آکاش میں کہاں کو رہے گی؟ آکاش تو نمت ماتر ہے. تو اس کو ہم پہلے ایسا ادھارن دے کے سمجھایا کرتے تھے کہ آپ اپنے گاؤں سے آئے ادھر جے پور میں, تو کسی دھرمشالہ کے میں اس میں ایک کمرے میں آپ نے اپنا پھیلا میلا جو تھوڑے بہت سامان تھی وہ رکھ دیا, پھر نہایا دھویا نپٹے, اور اصلی سامان تو اپنی جیب میں رکھ لیا. کیا سمجھ گیا؟ اب اصلی سامان مانو جو کم, اب وہاں پر وہ چیتھڑے پڑے ہیں آپ کے پہنے پہنائی چڈی بنیان کیوں جو اتاری ہے آپ نے, وہ تھوڑے پڑے ہیں, ایک تھیلا پڑا ہے. آؤں گے کہاں, آپ کہاں رہتے ہیں, کہاں ہیں ٹھہرے, کہاں ہیں دھرم سالا؟ ارے تم یہاں یہیں ٹھہرے ہو پورے کے پورے, تمہارا آتما بھی اس دیہ میں ہی ہے, یعنی دیہ تمہاری ہو تو وہ بھی یہی ہے, اور نگر نارائن تمہارا ہو تو وہ بھی یہی ہے. اب وہاں بچا کیا؟ تو وہاں ٹھہرنا کہنا, وہاں رہنا کہنا, کس کا کیا ارتھ ہے؟ ہر آدمی اپنے آتما میں رہتا ہے. آتما میں رہتا ہے, آتما ہی جو ہے نا وہ سوئم میں رہتا ہے. اب وہ جہاں جائے گا وہاں پھر رہنا بھی وہیں ہوگا. اب ہم چھ مہینے سے جے پور نہیں آئے, ہم جے پور میں رہتے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں جے پور میں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں آکاش میں رہتے ہیں تو یہ کہاں کے لائے تم, سواتما نہیں اپنے آتما میں رہتے ہیں, ہے نا. لیکن اس وقت جب پڑھتے تھے ہم لوگ تو ہم بولے کیا باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا جو آدھیاتم گیان بھی نہیں تھا اور رس بھی نہیں تھا, تو وہی لگتا تھا کہ آچاریہ مہاراج زیادہ گھی کھاتے ہوں گے, پھر درد کے ترک میں ترکے ان کے دماغ میں سوچتے ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ تم کہاں رہتے ہو تو ہم یہ بتائیں کہ آتما میں, کہ یہ بتائیں کہ جے پور میں, بولو کیا. دیکھو بے ساکشات امرت کا پان کرتے ہیں. اب ہمیں سمجھتے ہیں کوئی امرت ہوتا ہوگا تو جس کو پی لینے کے بعد میں پھر آدمی مرتا نہیں ہوا. امرت کی ویاخیا ایسا ہی لگ جگت میں لوگ کرتے ہیں کہ جس کے پی لینے پر یہ مرے نہیں, اس لیے اس کا نام کیا پڑا, امرت. तो ये कहते हैं ऐसा अमृत तो आचार्य से लिखा है पंडित जी ने कि ऐसा अमृत तो जगत में आज तक कोई दिखाई दिया नहीं, क्योंकि यदि होता तो हमारे लाखों वर्ष पुराने लोग दिखाई देते, एक आध ने तो पिया होगा, वो होता तो कोई तो पीता है? देवों को अमर कहते हैं, एक नाम देवों का अमर अमर है क्यों? लेकिन भाई साहब देव भी मरते हैं ना, मतलब बहुत काल तक जिंदा रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कह देते हैं। उस शब्द का क्या भाव है? अमर का अर्थ अमर नहीं है, जैसे अमर का अर्थ अमर नहीं है वैसे ही अमृत का अर्थ अमृत नहीं है। कोई अपने शिविर के टाइम पर बहुत क्लास में बहुत वो सब चलती थी तो एक आदमी बोल रहे थे कि गंधर्व भी देव है, सर्वार सिद्धि के देव भी देव हैं, वे देव गति के हैं, लेकिन भाई साहब उनको अहिमेंद्र बोलते हैं, वहां एक भी देव नहीं रहता है क्या? वहां देव नहीं, देव तो साधारण जनता को बोलते हैं, वहां तो सब अहिमेंद्र हैं। और सब अहिमेंद्र हैं का अर्थ क्या है रमेश जी? कोई इंद्र नहीं है, है? सब लिखा है तुम्हारे तत्वा सूत्र में, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, सूत्र है ना, क्या अर्थ है इसका? कि कल्पों में उत्पन्न कल्पोपन्न और कल्पों में उत्पन्न नहीं होंगे कल्पातीत। तो 16 श्लोक को बोलते हैं कल्प और उसके ऊपर बोलते हैं कल्पातीत। क्यों बोलते हैं कल्प? ये तो पढ़ा होगा तुम सुन रहे सब, कि वहां में ये इंद्र, ये सामानिक, ये पार्षद, ये लोकपाल, ये अनीक, ये प्रकीर्णक, ऐसे कल्प माने भेद, ऐसा उनमें भेद है। एक सौधर में इंद्र बनता है ना, तो जब वो आता है जन्म कल्याणक में तो काय पर बैठ के आता है, ऐरावत हाथी। हाथी कौन सी गति का जीव होता है, है? लेकिन वो हाथी त्रंत गति का नहीं है, है? क्यों? वो तो पहले स्वर का अभियोग्य जाति का देव है। वो 10 जातियां होती है ना, कौन? इंद्र, सामानिक, उनमें एक अभियोग्य जाति होती है जो सवारी का ही काम करती है, वो हमेशा हाथी माती। हाथी तो अपना यहाँ जगत में हाथी प्रसिद्ध है ना, पर हाथी सबसे बढ़िया सवारी मानी जाती है, तो उसने हाथी का रूप धर लिया होगा। लेकिन उस हाथी का वर्णन तो पढ़ो, ऐसा हाथी आज तक कहीं देखा है? कितनी सूढ़े कितने क्या वो हाथी थोड़ी बड़ी है, विचित्री टाइप का जानवर है, और वो देवगति का जीव है, है? उसे एक कल्पिसक जाति के देव होते हैं। वे क्या काम करते हैं? जो अपने यहां सफाई कर्मचारी करते हैं, तो वहां सफाई की जरूरत पड़ती होगी, और यदि पड़ती होगी तो 16 श्लोक के ऊपर नहीं पड़ती होगी, तो वहां कौन करता होगा? यानी ये 10 तरह के भेद हैं, कल्प माने भेद। देखो वहां कोई भेद नहीं है, सब बिल्कुल बराबरी के हैं, उसका नाम है अहिमेंद्र, अहम इंद्र। यानी सब देव नहीं है, सब इंद्र हैं। मैं पंच कल्याणकों में कभी कभी बोलता हूं, फिर सब लोग आकर के मेरे को टोकते हैं कि अब मत कहियो ऐसा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहता हूं? साहब 14 में इंद्र की सभा लगी है और उसमें 16 इंद्र बैठे हैं। 16 इंद्र कौन है? अब वो सब प्रतिष्ठाचारियों से पूछो, 16 इंद्र होते हैं होते ही नहीं। इंद्रिय 12 होते हैं, सुना आपने कभी? 16 इंद्र तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इंद्र 16 नहीं होते, इंद्र 12 होते हैं और 12 प्रतिनिधि होते हैं। तो क्या 12 बोलो क्या 24 बोलो? यदि प्रतिनिधियों को भी इंद्र कहना है, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति कितने होते हैं? एक। और उपराष्ट्रपति को भी शामिल करना हो तो 2 कह लो, लेकिन 16 तो किसी गिनती से ही नहीं होते, है ही नहीं, वो चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। जो जगत में है ही नहीं वे खरीदे जा रहे हैं और वे बेचे जा रहे हैं। और लोग लाखों में खरीदते हैं और ये देते हैं। और अब देखिए, अब पहले स्वर्ग का इंद्र सोधर्म, तो वो बन गया अध्यक्ष, बड़ी सीट पे बैठ गया, और 16वें स्वर्ग का वो कोने में लेके बैठा है, वो 2000 वाला। वो सोधर्म की सभा में क्यों आएगा 16वें स्वर्ग का इंद्र? ये पहले इंद्र की सभा में 16वें स्वर्ग का इंद्र क्यों आएगा? कभी ऐसा किसी पंच कल्याणक में ऐसा नहीं हुआ जो चौथे काल में 24 हुए थे उनमें से, तो वो इंद्र सभा ही नहीं है। सब चल रहा है, लोग नहीं मत बोलना मत बोलना, बाबू भाई भी कहते थे अब दुनिया में चल रहा है आप मत बोलो, तो कभी कभी ये कहते थे आप लिख दो ये। मैं कहता हूं कि मैं लिख तो सकता हूं लेकिन मैं कभी लिखूंगा नहीं, क्यों कि ये सब इतना प्रसिद्ध इतना प्रचलित है कि सब प्रतिष्ठाचारी एक हो जाएंगे। क्यों कि एक दो भी गलत सिद्ध होते हैं और फिर दूसरी फिर मेरा लिखा प्रतिष्ठा पाठ कोई कराएगा ही नहीं, क्या करें देख करके, वही चलेगा मेरा बहिष्कार हो जाएगा। मैं तो नैरोबी के पंच कल्याणक में भी ये बात बताई थी, तो बाबू भाई वो धन्यलाल जी बोले पंडित जी रहने दो, ठीक है भैया रहने देते हैं, क्या करें है? अब ये सब तत्वासूत्र नहीं पढ़ते हैं, ये तो सामान्य बातें हैं ना, ये कोई समय साल की गाथा में से निकली है। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि उनने 25-25, 50-50 करा लिए, शतक हो गए, और उनने इस बात पे आज तक सोचा ही नहीं। भाई विकल्प आ जाता सोच लेते हो, फिर कोई अन्न सा स्वर्णम नास्ति, कोई दूसरा उपाय नहीं है, फिर करते रहते, मेरा मतलब समझ नहीं ना है? इस साधना निक्षेप होता है तो वो उसका मतलब जो हमें वो उसके अनुरूप होना चाहिए ना है? है? उसका अनुरूप होना चाहिए, तो वो कुछ नहीं है, चल रहा है। हम जैसे बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, मैं तो बंदी कर दिया बैठना, मैं तो जाता हूं पंच कल्याणकों में तो अकेले प्रवचन में करके अपने घर चला जाता हूं 99%। कभी कभी लोग पकड़ के लोग ले जाते हैं 10-5 मिनट, तो मैं बैठ जाता हूं। आप समझे ना कि मुझे तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि क्या क्या हो रहा है, सारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या जान रहा है, सारे तुम एक सर में मुझे अभी पूछना किसी पंच कल्याणक में 5 लाख आदमी होंगे, इंद्र कितने होते हैं क्या? तो पंडित साहब सब बोलेंगे 16। तो 12 होते हैं तो स्वर्ग तो 16 होते हैं, तो स्वर्ग भी 12 होते होंगे, ऐसा नहीं है। पहले स्वर्ग में 1, दूसरे स्वर्ग में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, और 5वें और 6वें में मिलाकर 1, 7वें और 8वें में मिलाकर 1, 9वें और 10वें में मिलाकर 1, 11वें और 12वें में मिलाकर 1, और 13वें में 1, 14वें में 1, 15वें में 1, 16वें में 1, ऐसे होते हैं। کیا ایسا ایسا میں سمجھا کہ دنیا میں منہ باہر ہی باہر ہی باہر ہے. ان تتواسوں کی پریچھائیں پاس کر کے ساسو کی ڈگری لے کے جائیں گے, ان نے بھی اس میں ماتھا لگانے کی کوشش نہیں کی ہوگی, کبھی ان کے چت میں بھی پرشن کھڑا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ تو یہاں تو باہر ہی دکھ رہے چلے. ارے نووکار منتر جیسی چیز میں منگل اور اتم میں آچار اپادھیائے کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس کی طرف کسی کا رس نہیں جاتا ہے. کیوں میں کتاب لکھ سکا ہوں, لاکھوں چھپ چکی ہے, کم سے کم 200 ویاخیان کر چکا ہوں, ہزاروں لوگوں نے سنا ہے, اس ویاخیان کی پرشنسا کی ہے, پھر بھی اس پہ اپیوگ میں نہیں آتا ہوں میں جانا. اتنا ہونے کے بعد نہیں جاتا, اس سے معلوم پڑتا ہے کہ چھ اکسوں میں جو ہوتا ہے نا گیان کا گیہ بننا ہوتا ہے, وہی گیان کا گیہ بنتا ہے, اور جو نہیں بننا ہوتا وہ نہیں بنتا ہے. آپ سو سر کے ہو جاؤ کل میں. ابھی دیکھو اس میں ہر شبد کا ارتھ الگ ہے نا. کون سا میں نے بتایا, پکشپات کا ارتھ الگ ہے, گپت کا ارتھ الگ ہے, اور امرت کا, تین کے بتا دیے نا, اور نواس کا, چار کے ارتھ جو بالکل الگ ٹائپ کے ہیں وہ میں نے یہاں بہت اسپشٹ شبدوں میں بتائے ہیں آپ کو. اب دیکھیں کتنوں کو یاد رہتے ہیں, کیونکہ ان کا چت وکلپ جال سے رہت ہو گیا ہے اور ایک دم شانت ہو گیا ہے. اب ہم شانت کا ارتھ بھی کیا سمجھتے ہیں بولو, کہ بہت آکلتا ہو جائے, تیرے پھیکا پڑ جائے, ایسا ہو جائے تو اسے ہم اشانتی بہت ہے. ہم ابھی بھگوان آتما کی چرچا کر رہے ہوں تو بہت شانتی ہے, اس کے ورد شانتی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. نشچے نیشے میں شدھ بدھ ہوں, اس کا نام اشانتی ہے. ایسا دھیان کرنا, شدھ ہوم بدھ ہوم نرنجنو ہوم, ایک دم شانت ہو کر ایسا کرنا. ایسے وکلپ کریں گے تو شانت کیسے ہوں گے؟ شانت دشا تو نروکلپ کا نام, دشا کا نام ہے. سکھ و شانتی میں انتر سمجھتے ہیں؟ اپنے یہاں دو شبد ہیں نا, کون کون سے؟ سکھ اور شانتی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ ارے سکھ سکھ گن کی پریائے ہے, اور شانتی چارتر گن کی پریائے ہے. تو اشانتی کسائے کا نام ہے, وکلپوں کا نام ہے, آپ سمجھے نا, اور آکلتا کا نام دکھ ہے. تو یہ تو بتا دیا آپ نے شبدوں کا کھیل, لیکن ہمیں تو یہ بتاؤ کہ ان میں پریکٹیکل کر کے بتاؤ ہم کیسے نرنے کریں کہ شانتی کیا ہے اور سکھ کیا ہے. آپ 10 دن سے بھوکے ہیں, اپواس نہیں کیے ہیں, آپ کو کھانا نہیں ملا, سمجھنا کیا, 10 دن سے بھوکے ہیں, کھانا نہیں ملا, اس لیے بہت اشانتی تھی چت میں, کیونکہ آگے ٹھکانا بھی نہیں ہے کبھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور آکلتا بھی بہت ہے نا, دونوں ہیں نا, اشانتی اور آکلتا, اور کھانا مل جائے تو دونوں چلی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں تھوڑا کہ سامنے تھالی آپ کے بڑھیا سے بڑھیا بینجنوں کی آپ کو پروس دی, کیوں؟ تو اشانتی تو مٹ گئی اور آکلتا بنی ہوئی ہے, کیوں؟ پیٹ میں کھانا نہیں پہنچا, دکھ تو بیدن ہو رہا ہے نا, لیکن آسان اب کہیں ملے گا نہیں, نہ معلوم کب تک نہیں ملے گا. ایسی جو آسانتی تھی ببلو وہ تو مٹ گئی, اب برکھانے والے ہیں, ابھی ان نے کہی کہ شروع کرو, بس پھر تو پٹاپٹ اپنا ہی مال ہے. تو ابھی کیا ہے, اشانتی گئی اور آکلتا رہی. اتنے میں کوئی آیا اور سامنے سے تھالی اٹھا کے لے گیا, کس نے وقوف نے اس کو بیٹھا دیا, ہٹا, بولو, اشانتی بھی آ گئی. انتر سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر جس بیوقوف نے اٹھایا تھا اسے اس کے پتا نے تو چانٹا مارے, بیوقوف مہمان کا اپمان کرتا ہے ہٹ جائے بھائی صاحب میں معافی مانگتا ہوں آپ کو اس کی طرف سے آپ تو پھر آ جاؤ اشانتی پھر گئی کیوں اور آکلتا تو بنی رہی لگاتار کیوں آکلتا تو پیٹ میں بھوجن جائے گا تب جائے گی اب انتر سمجھ میں ہے نا اشانتی اور آکلتا وکلپ ماتر اشانتی ہے یہاں کہہ رہے اور نرویکلپ دشا ہی شانتی ہے یہ اس کا الگ ارتھ ہو گیا نا اور جو نیوں کے پکشپات کو چھوڑ کر سدا سروپ میں گپت ہو کر نواس کرتے ہیں بے ہی ساکشات امرت کا پان کرتے ہیں کیونکہ ان کا چت وکلپ جال رہت ہو گیا ہے اور ایک دم شانت ہو گیا ہے. دیکھو اب اس کا اب پدیہ انواد پڑھتے ہیں تو روزی نہ پڑھتے ہو کہ جو نب سے نجماہی ہے نا بالکل اکثر سے انواد ہے کہیں اس کا. اب دیکھیں اپن نے یہ دو سوٹھا بنایا اتنا چھوٹا سا اور ابھی بناسی داس نے یہ چھند بنایا اسی کلش کا انواد ہے جی. پہلے پڑھیں جی نہ کرے نہ اے پکش بے واد دھرے نہ وکھاد علی کے نہ واکھیں بھاو تو پورا آ ہی گیا ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن علی کے نہ بھاکیں جھوٹ نہیں بولیں یہ کون سے شبد کا ارتھ ہے جو اپنا جو چھند ہے یدی یہ اس کا پدیانواد ہے تو یہ کون سے شبد کا یہ ارتھ ہے اور بھی کئی ہیں سمجھ رہے نا. ٹھیک ہے یہ موٹا ہے نا علی کے نہ بھاگیں جھوٹ نہیں بولتے ان میں ہے ایسا کوئی شبد نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ میرا یہ پدیانواد ہے اور ان کا یہ بھاوانواد ہے دونوں میں فرق ہے. کیا سمجھ رہے ہیں ابھی کیوں ہے یہ بھی بتاؤں گا گھبرانا نہیں پہلے ہی بتا دوں نا آکلتا ہو جائے گی. اب یہ دیکھو اسی کے اوپر پڑھو اسی پرکار کا بھاو کلش ٹیکا میں پانڈے راجمل جی بھی ویکت کرتے ہیں جو اس پرکار ہے. پانڈے راجمل جی نے کلش ٹیکا لکھی تو کلسوں کا ارتھ لکھا تو بنارسی داس تو بس جو انہوں نے سمے سار پڑھا تھا وہ صرف کلش ٹیکا کے آدھار پر ہی پڑھا تھا کیونکہ اس وقت ہندی کا تو کوئی گرنتھ تھا ہی نہیں گدھ تھا ہی نہیں. بتاؤ کوئی ہے شانتی جی مانے بناسی داس جی 400 برس پرانے ہیں تو 400 برس پہلے کی کوئی ہندی ٹیکا سمے سار کی اپلبدھ ہے کیا نہیں. وہ سنسکرت جانتے نہیں تھے کاغذ جانتے نہیں تھے کیا تو انہوں نے سمے سار کلش ٹیکا کے آدھار پر ہی پڑھا تھا. وہ تو یہی سمجھتے ہیں تو اس کلش میں یہ سب ہوگا کیونکہ ان کے گرو جی نے لکھ دیا ہے. اور وہ پانڈے راجمل جی پنچادھائی والے ہیں اور وہ پانڈے راجمل جی یہیں بیراٹ میں رہتے تھے. بیراٹ سمجھتے ہو بیراٹ نگر. یہاں پر اپن دلی جاتے ہیں تو راستے میں ایک شاہ پورا کر کے گاؤں آتا ہے وہاں سے الور جانے کے لیے راستہ پھوٹتا ہے تو اس راستے میں ایک وراٹ نگر گاؤں آتا ہے وہاں پر ایک بھٹارک جی تھے. بیٹا اپنا بھٹارک جی کا تو معلوم میں کھیتیں ہوتی تھیں زمینیں ہوتی تھیں بڑے بڑے اور ایک در چھوٹے موٹے جاگیردار یہ مہنت ہوتے تھے نا آجانیوں میں مہنت اور سیتامبروں میں یتی اور دگمبروں میں بھٹارک کیونکہ انہیں زمینیں دان میں ملتی تھی انہیں مکان بھی دان میں ملتے تھے. دیکھو ایک خطرناک بات کہہ دیتا ہوں ابھی سن لینا. ये अपने जितने मठ मंदिर हैं, अपनी संस्थाएं सब, ये सब 99% उनके धन से चल रही हैं कि जिनके आगे नाचना पीछे पड़ा कुछ नहीं था। या तो विधवा थी, या वे बाल बच्चे नहीं थे, बांझ थी, आप समझे ना, उनके पति उनका। अब वो धन कहाँ जाए, अब वो भाइयों से, देवरानी जिठानी से इतना झगड़ा होता रहता था, उन्हें देने का भाव रहता नहीं था, तो अंत तो गत्ता धर्म मंदिर में ही होता है, तो सब मंदिर को दे देते हैं। ये जितनी जमीनें जायदादें हैं जो लगी है ना मठों के साथ, हमें भी बहुत लोगों ने देने की कोशिश की, हमने नहीं लिया आज तक। मतलब एक देवरी है ना सागर के पास, वहां 25 बीघा जमीन, यहां आके बैठे रहे 6 दिन तक, ये ले लो सब, एक शर्त है इसे बेचना नहीं, बस आपको जो बनाना हो बनाना। मैंने कहा महाराज हमको नहीं चाहिए, तुम हमें भट्टारक बनाओगे कि हम इतनी जमीन जायदाद इकट्ठी कर लें और फिर जाके देवरी अपनी जायदाद संभालने जाए। देवरी है ना सागर के पास, नाथूराम प्रेमी वाली देवरी, वहां से यहां जयपुर में यहां एक मंदिर है अपने यहां का जौरी बाजार के आसपास, एक अग्रवाल भाई का, देखिए ये मंदिर आप संभाल लो, हमारा घर भी पूरा ले लो, वो घर में ही मंदिर है और आप अपना केंद्र बना दो। मैंने कहा भैया हमको तो ये बहुत मंदिर है, हमको तो यहीं जाना भाई पड़ता है, हम वहां तुम्हारा कहां जाएंगे, समझ हमने नहीं लिया शांति समाधान ली, बहुत उनने हमसे कहा, हमें नहीं चाहिए। सोनगढ़ में खेरागढ़ वालों का जो मकान था, जो जहां बिल्कुल अध्यक्ष रहते थे ना, कौन हरू भाई बोरा, उनके बगल में, उनने हमको बहुत देने की कोशिश करी। मैंने कहा सोनगढ़ वालों को दे दो, कि नहीं साहब हम तो जयपुर में देना है, हम करेंगे क्या इसका। बोले आप यहां आओगे सोनगढ़ देश में रहना। मैंने कहा सोनगढ़ में अपने मकान में रहना पड़ेगा तो हम आएंगे काहे को, हम तो जहां जाएंगे निमंत्र से जाएंगे, थाट बार से जाएंगे, वो व्यवस्था करेगा, यहां आगे हम रोटी बनाएंगे, यहां आकर हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, नहीं लिया। क्यों, हमें पक्का पता था ये भट्टारकों के लक्षण है, लिए होते ऐसी जायदाद है ना। एक बहन मंडला में हमारे नाम मकान, संस्था के नाम मकान लिख के छोड़ गई, बस अब वो कहा हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है, अब करो मुकदमा लड़ो जाकर के, तो वहां पेश ही करो, जो बैठे बोले वही हालत में चाहते हैं। आप समझे ना, मैं क्या यही क्या, ऐसे ऐसे भट्टारकों के पास खेती हो जाती थी, मकान हो जाते थे, और बस वे उनके संभालने में सारी जिंदगी जाती थी। अभी जाके मैंने जो बताया है ये सब इस पर बोल रहा हूं, जाके सब जगह सर्वेक्षण कर लेना, उनके पास जितनी जमीन जायदादें हैं वो कैसे उपलब्ध हुई थी, क्या खेती है, खेती करा रहे हैं, नौकर हैं, फिर ताकर हैं, फिर बोले गए क्या नाम, ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, गाड़ियां आ गई, नौकर ताकर सब लग गए, ऐसे भट्टारक भी थे विराटनगर में जैसे भी होंगे। मैं उनको पता नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो सामान्य भट्टारक की प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूं। तो मैं उनके यहां ये पंडित राजमल जी रहते थे और ये इतने अध्यात्म के रसिया थे, और भट्टारक तो अपने प्रशासन में रहते थे, जैसे राजाओं के यहां राजगुरु रहते थे ना, वो धर्म करते रहते थे, राजा उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखता था, उन्हें कोई नौकर नहीं कह सकता था, यदि कह दे तो राजा से ऐसे ऐसे दंड मिलेगा उसे, उसका नाम उनने राजगुरु रखा। राजा कहता हमारे गुरु हैं और तुम कह रहे राजा के नौकर हैं, आप सब गुरु हो नौकर नहीं हो, तब भी दिमाग में से निकाल देना कि हम नौकरी करते हैं, सब गुरु हैं, सब ज्ञान दान देते हैं, सब पढ़ाते हैं, कहता वे जो तनख्वाह नहीं लेते वे गुरु हैं, इस धोखे में मत रहना, वे रोटी कहां से कमाने जाते हैं, वे भी रोटी कपड़ा समाज से लेते हैं, तुम भी रोटी कपड़ा ले रहे हैं, इतना ही फर्क है कि उन पे लाखों रुपए का खर्चा आ जाए तो अभी समाज करेगी और तुम्हें नाप नाप के ही देगी, क्यों समझिए, ज्यादा कौन लेता है, घबराना नहीं, समझ में आया, आप 2 नंबर के नहीं हो, देश का कोई अध्यापक नौकर नहीं है, सब गुरु हैं, ये गुरु बुद्धि जिस दिन निकल जाएगी विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएंगे, और अध्यापक जिस दिन नौकर बन गया वो पढ़ा नहीं पाएगा। वो किसके प्रति जिम्मेवार है? हम तो कुंद कुंद के प्रति उत्तरदायी हैं, अमरचंद के प्रति उत्तरदायी हैं, ख्याल में है ना? हमारी व्यवस्था जुटाने वाले के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तुमने ऐसा कहा, तुम कौन पूछने वाले होते हो? कुंद कुंद आगे पूछते हमसे कि हमारे गाथा के बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे? अमरचंद पूछते, हम उन्हें जवाब देंगे। समझना है? अच्छा चलो, छंद पढ़ रहे थे ना अभी, जी न करे नए पक्ष विवाद धरे न बिखा दे अली के न भाखे उद्वेग तजे घटे अंतर जी न गुनी गुने भेद विचारते अब मैं आपको ये बताना, इसका अर्थ मैंने इसके पीछे लिखा है, वो अपन पढ़ लेंगे और इसका भी अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि पांडे राजमल जी ने क्या लिखा और उसमें से ये सब बातें इनने इस छंद में रख दी। तो ये तो इसका पद्यानुवाद है, ऊपर के गद्य को उनने पद्य में ढाल दिया है। काय में कौन से ना देवर जो एक सत्य रूप वस्तु है उसका द्रव्यगुण पर्याय रूप उत्पाद व ध्रुव रूप विचार करने पर विकल्प होता है। ये पांडे राजमल जी की ताकत थी। उत्पाद या ध्रुव के बारे में सोचो, द्रव्यगुण पर्याय के बारे में, ये विकल्प है क्या? उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है। आप समझिए ना, आकुल कौन सी आकुलता है इसमें? आप किसको आकुलता समझते हैं? वो यहां काय को आकुलता बता रहे हैं। आकुलता दुख है, इसलिए वस्तु मात्र के अनुभव करने पर विकल्प मिटता है। माने आप सामान्य वस्तु का अनुभव करो, बस खत्म। विकल्प मिटने पर आकुलता मिटती है और आकुलता मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी हैं। अनुभवी, अनुभवशीली माने अनुभव करने वाले शुद्ध, वो परम सुखी हैं। अब इसका उन्होंने ये लिखा है, ख्याल नहीं ना? ये तो मैंने इतना छोटा अंश दिया है, राजमल जी की तो काफी बड़ी टीका है, होगी एक पेज की कम से कम, लेकिन ये महत्वपूर्ण अंश दिया है जिसका उन्होंने ये छंद बनाया है। तो देखो अभी अपन सबसे ऊपर से पढ़ते हैं। उक्त छंद में स्वरूप गुप्त पद आया है। आचार्य अमृतचंद को यह पद अत्यंत प्रिय है। वे इस पद का प्रयोग बार बार स्वयं के लिए करते हैं। अंतिम कलश जो एक प्रकार से प्रशस्ति का छंद है, उसमें वे स्वयं को स्वरूप गुप्त अमृतचंद कहते हैं। यहां भी वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वरूप में गुप्त रहकर निवास करते हैं, निजात्म स्वरूप का आश्रय करते हैं, वे साक्षात अमृत पान करते हैं। इस प्रकार स्वरूप गुप्त और अमृतचंद ये दोनों पद इस छंद में भी आ गए हैं। उक्त छंद का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस तरह लिखते हैं। राजमल जी का पढ़ लिया, जयचंद जी का और लेते हैं कि जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता है। अब ये जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है माने वो विकल्प खड़ा रहता है, बस खत्म। यहाँ पक्षपात वाले को फिर निकाल देना वो पक्षपात जो तुम्हारे दिमाग में घुसा है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमको कुंद कुंद के अमरचंद के शब्दों को की स्टडी करनी पड़ेगी, तब उनका भाव हम समझ सकेंगे। क्योंकि 2000 वर्ष में शब्दों के अर्थ बहुत बदल जाते हैं। जितना महिमावाचक शब्द है धीरे धीरे उसकी महिमा कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं लाघव। कुछ शब्दों का महिमा कम थी और धीरे धीरे बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं गौरव। शब्द का गौरव बढ़ गया, शब्द का लघुता आ गई। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उल्टा हो जाता है यार। अब बुद्धू जैसे शब्द का केवल ज्ञानी अर्थ था और मूर्ख हो गया, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। भाषा विज्ञान पढ़ो तो सब मालूम पड़ेगा आपको। अर्थ लाघव, देखिए आज पंडित शब्द में अर्थ लाघव हुआ है। कैसे हुआ? अपने शास्त्रों में मरणों की चर्चा है तो पंडित मरण, तो पंडित पंडित मरण, ये सब शब्द सम्य दृष्टियों से ऊपर के लिए प्रयुक्त हैं। यहां तक कि अरहंत भगवान को भी पंडित कहा है, और आज धीरे धीरे उसका अर्थ ऐसा हो गया, ये पूजा पाठ वाले पंडितों ने जी दुर्दशा कर दी है कि भला आदमी अपने नाम के सामने पंडित लगाने में उसे शर्म आती है। एक दफे पंडित नेहरू को भी ये विकल्प आया था, उन्होंने कहा था मेरे नाम के सामने पंडित हटा दो। क्यों? कि भैया तुम पढ़ के पंडित थोड़ी बने हो, पढ़ के तो तुम वकील हो, तुम्हारा बाप भी वकील था। लेकिन जो कश्मीरी पंडित, एक जाति है पूरी जो अभी भाग के आई है, 3 लाख कश्मीरी पंडित अनाथ हैं आजकल, उन्हें कोई जगह नहीं है जिसका वजह शरणार्थी हैं, ये उस जाति के हैं क्या? और इनकी मां पंजाबी थी, क्यों कश्मीर पंजाब पास पास में है ना, स्वरूप रानी। जिसे एक जगह उन्होंने कहा था, जब वो आया हुआ था ना भिंडरा बाला का झगड़ा और पंजाब का फौज, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ पंजाब की है, मैं पंजाब, पंजाब तो मेरी मातृभूमि है, माता की भूमि है, समझे ना, मैं पंजाब के साथ कोई जबर कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पंजाब को समृद्ध देखना चाहता हूँ, हैं? और कश्मीर मेरा काम, मैं तो कश्मीर का हूँ, कश्मीरी पंडित थे वो, इलाहाबाद में कैसे आ गए, यूपी के कैसे बन गए? अरे उस जमाने में हाई कोर्ट सिर्फ इलाहाबाद में था सारे देश का, और सुप्रीम कोर्ट लंदन में, विश्वविद्यालय भी सबसे पहले एक इलाहाबाद में था, इलाहाबाद ज्ञान का केंद्र था। इसलिए वो जब हाई कोर्ट में वकालत करने लग गए उनके बाप, तो उन्हें इलाहाबाद में आके रहने पड़े, और विश्वविद्यालय सबसे बड़ा वहीं था। उस वक्त के लोगों को पढ़ो, सारे भाषा विज्ञानी, हिंदी के बड़े बड़े विद्वान सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो इन शब्दों का ह्रास हो जाता है। दो उदाहरण दिए ना मैंने, कौन कौन से, पंडित शब्द का ह्रास हुआ है और बुद्धू शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया है। अब ऐसा शब्द भी आप खोज सकते हैं कि जो पहले बिल्कुल सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता था और अब धीरे धीरे वो बिल्कुल बहुत महान शब्द में हो गया। अब उसने जरा कहना खतरे से खाली है, नहीं है ऐसा? गांधी जी ने वो है ना अनुसूचित जाति जो भी समझ लो आप, उनको बहुत बढ़िया नाम दिया। क्यों? तो बे बड़े बने के नहीं बने, उस नाम की दुर्दशा जरूर होगी। तो द्रविड़ थे तो 2000 वर्ष पुराने आचार्य, 1000 वर्ष पुराने अमरचंद के शब्दों को उस काल में उसका क्या अर्थ समझा जाता था, ये समझे बिना आप कैसे समझ सकते हो? इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि यूनिवर्सिटी में आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि आपने समयसार पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये मैंने कुंद कुंद पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अमरचंद पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तुलसी को तुमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कि तुलसी को, तुलसी राम की तुमने कोई किताब ही नहीं देखी, माने तुलसी को पढ़ा, माने तुलसी का जो साहित्य है उसमें कौन से शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, ये भाषा की दृष्टि से जानना, भाव की दृष्टि से जानना, स्टाइल की दृष्टि से जानना, इसका नाम है तुलसी को जानना, इसका नाम है कुंद कुंद को जानना, इसका नाम है अमृतचंद को जानना, क्योंकि तब तक आप उसके मर्म को नहीं समझ सकते। ख्याल में ना, वो एक अभ्रंश का बहुत बड़े अच्छे विद्वान नामवर सिंह करके एक ठाकुर हैं और वो अभ्रंश भाषा के अच्छे विद्वान हैं, तो उन्होंने लिखा कि जैन दर्शन में इस शब्द का ये अर्थ होता है आंख नीच के ये अर्थ कर देना। अभी मेरे ध्यान दिमाग में से निकल रहा है वो करीब योगसार वगैरह है पद्मा प्रकाश, उसमें बार बार आता है। तो उन्होंने कहा कि इस शब्द का ये अर्थ होता है आंख नीच के करना और दूसरा अहम अहंकार, ये शब्द है ना, आत्मा में अहंकार होना। अब अहंकार घमंड हो गया और वो मुसलमान दर्शन था। ऐसे कई शब्द हैं, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता, पक्षपात का अर्थ समझ गए ना, क्या विकल्प खड़ा रहता है, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। वो क्षोभ क्या है, वो विकल्प खड़ा यही क्षोभ है। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है, माने विकल्प खत्म है, तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है। ये आ गया लौट के, स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प हुई तो विकल्प वो पक्षपात था, विकल्प आकुलता थी। स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये इस कलश का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया है। तो अपन ने पांडे राजमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, ये सब अपन आज खत्म करना चाहते हैं। जो नयों के पक्ष में पढ़कर पेज नंबर 232 विवाद नहीं करते, चित्त में विषाद को नहीं रखते, झूठ नहीं बोलते, आंतरिक उद्वेग को छोड़ देते हैं और सदा शांत रहते हैं, जो गुणगुणी के विचार में भी नहीं उलझते, गुणगुणी के विचार में भी को उलझना कहते हैं वो, और मन को समस्त मन की समस्त आकुलता छोड़ देते हैं, जो जीव ही बेजीव ही इस लोक में आत्म ध्यान धारण करके अखंडित ज्ञानामृत का रस चखते हैं, आत्मानुभव करते हैं। ये बनारसी दास के छंद का अर्थ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस छंद में मात्र यही कहा गया है, इस सारे का निष्कर्ष निकाल के रखा है अर्जय, जो व्यक्ति नए पक्षातीत होकर निज स्वरूप में निवास करते हैं, विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले वे व्यक्ति अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान करते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभवी ही सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं है। बस आत्मानुभवी भी अनुभव के काल में एक मामले में अपना बहुत गड़बड़ होती है। अब छठ में गुणस्थान वाला तो अनुभव का काल नहीं है, वो विकल्पों का ही काल है, तो उसमें भी सुखी है कि दुखी है? अब इसके हिसाब से दुखी है, क्योंकि अनुभव का अनुभव वाले ही सुखी होते हैं। अनुभव से बाहर आए, विकल्प खड़ा हुआ, चाहे नयों का ही विकल्प हो, तो भी दुखी बताए ना। तो भाई साहब, वे तीन कसाई के अभाव रूप जो परिणति शुद्ध हुई है, उसके कारण वे उतनी सुखी हैं, और जितने विकल्प चल रहे हैं उतना वो दुखी है। तो वो थोड़ी के संबंध इस चीज से पूर्ण सुखी हो जाते हैं। आत्मानुभव का सुख उन्हें आ जाता है, लेकिन जब तक केवल ज्ञानी नहीं हो तब तक भी अनंत सुखी तो नहीं होते हैं ना, तो अनंत नहीं होते। तो अनंत में से जितने हुए हैं तो बाकी दुखी कहलाए ना, तो दुखी कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सोचो, ये भी बहुत झगड़ा चलाता समझ लीजिए, आपको मालूम नहीं है कि एक दीपचंद जी सेठिया थे, नाम तो सुना होगा हमने, और लालचंद भाई थे, दो जने थे, गुरुदेव के दोनों अन्यायी थे। दीपचंद जी सेठिया ने ये कहा, अपने शास्त्रों में भी लिखा है, ये बनारसी दास में भी लिखा है कि उन्हें तो बाहर निकले तो भट्टी जैसा दुख लगता है। समय दृष्टि का उपयोग बाहर आए तो भट्टी जैसा, अब सुना होगा ये सब, निहाल जी के भी उसमें है, जैसे उन्हें भट्टी में झोंक दिया, अब है सम्य दृष्टि, यदि सम्य दृष्टि नहीं रहे तो मजा आ जाए, उन्हें भट्टी में झोंका हुआ कैसे लगे। तो सम्य दर्शन कायम है और वो भट्टी जैसा दुख वेदन करते हैं क्या। तो लालजुन भाई ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल नहीं, सम्य दृष्टि को दुख का वेदन करता ही नहीं है, मतलब अपने स्वभाव का ही वेदन करता है। और सेठिया जी इस पक्ष में हो गए कि उनका लिखा था उसमें, जो उनकी एक किताब छपती थी, सेठिया जी को आपने सुना नहीं है, ये सरदार शहर में उनके बच्चे पोते अभी आते हैं अपने यहाँ शिविरों में, तो वो इतने आध्यात्मिक थे, गुरुदेव के पास भी गए थे और अपने इसी थे कि हम जब उनसे गुरुदेव की आज्ञा से उनसे मिलने गए इसी विवाद में के चक्कर में, तो उनके घर में जाते थे तो दरवाजे पर महिलाएं गीत गा के स्वागत करती थी किसी का भी घर मेहमान का। फिर शादी विवाह में वो मिले थे अपने क्या पंचा सुपरिया आप तो जानते होंगे, मुझे स्वागत ही है ना, तो ऐसा हम लोगों का वहां स्वागत हुआ। फिर जब भोजन करने को बैठते थे तो उस वक्त महिलाएं गीत गाती थी और वो गीत सेठिया जी ने खुद बनाए थे, और उसमें ऐसा था आत्म को लसन्यारो पुदगल को रसन्यारो पुदगल को रसन्यारो आत्म को रसन्यारो। ये भोजन में कोई रसमस नहीं है, ये तो पुदगल का रस है, आत्मा का रस अलग है, मतलब भोजन संबंधी ये ऐसे गीत बनाए थे, उनकी किताब भी छपी थी ये करके वो सब, तो वो बहुत मतलब प्रसिद्ध थे दीप रंजन सेठिया। सितंबर से दिगंबर बने थे सरदार शहर में, 5000 सितंबरों के घर हैं, उनमें अकेले दिगंबर बने थे वो गांधी स्वामी जी बने थे। अब उनमें बहुत चक्कर चलने लग गया कि वो दुख का अनुभव करता है कि नहीं करता है। तो आप उस झगड़े के बाद जितने भी प्रचन हुए हैं गुरुदेव के, उनमें आपको ये बात बहुत जोर देकर के मिलेगी क्या कि सम्य दृष्टि जीव को आकुलता होती ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो दुख को जानते ही नहीं है, वेदन नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो उन्हें रोते भी हुए भी देखा जा सकता है शास्त्रों में। सीता के वियोग में राम को रोते हुए, राम सम्य दृष्टि राम थे और रोते हुए देखा जाता था, अथवा सीता दीक्षा लेके गई थी तब भी राम को रोते हुए देखा जा सकता है। तो वो इस बात को मतलब कहना चाहते थे और वो यहाँ आए थे जयपुर, वो खुद जाना चाहते थे सरदार शहर, लेकिन कोई कारणवश नहीं जा सके, तो उन्होंने हमें पाटनी जी बाबू भाई इन सबको भेजा था और हम उनके पास गए थे। हाँ फूलचंद जी पंडित जी थे, बड़े दादा जी थे, सब थे, हम एक दो गाड़ी लेके गए थे उनसे वो सब चर्चा का समाधान मतलब करने के लिए, समझना है ना। अब वो जो आता है ना गुरुदेव के प्रचनों में, आपकी समझ में नहीं आता ये क्यों आ रहा, ये क्यों आ रहा। सम्य दृष्टि तो तिंद्री आनंद का वेदन करता है, ये कहने वाले उन्हें दुख का भी वेदन करता है, ये क्यों बीच बीच में कह रहे, आप समझ गए ना। अब वो जो परिस्थिति होती है उससे संबंधित वो बात होती है और उसकी वजह से वो बात आती है सामने, वो इस तरह के विकल्प चलते हैं ना है? कभी कभी ऐसा लगता है आत्मा स्वर पर दोनों को जानता है, इस पे इतना जोर क्यों दे रहे, ये सामान्य बात है लोगों को लगती है, लेकिन उस वक्त कोई ऐसे लोग थे जो बहुत जोर से आत्मा पर को जानता ही नहीं है, ऐसा आंदोलन चला रहे थे, तो इसलिए उसके जवाब में ये बार बार आता है कि सारे ध्यान ध्यान के पीछे क्यों पड़े, अरे ध्यान के पीछे पड़ जाएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे क्या इंसान है, लेकिन ये क्यों कर, इसका निषेध क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त की ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं ये उनका ध्यान के नाम पर देह की सेवा करने वाली प्रवृत्तियां वो चल रही थी बहुत तेजी से, वो उनके संदर्भ में बात आती है, वो कोई जो ध्यान है अपने शास्त्र में उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, उसके तो अनुकूल ही है सब। अब उन्हें ध्यान के विरुद्ध ध्यान के पक्ष में ध्यान के ऐसा ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना कि तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उनकी भाषा का उस समय क्या अर्थ समझा जाता था, उस शब्द का क्या अर्थ था, वो जानना जरूरी है, तब उस रहस्य को आपको पाओगे। अध्यात्म का रहस्य भी बिना कीड़ा बने, बिना उस पर लट्टू हुए, ये भैया ये 24 घंटे का काम है, ये पार्ट जॉब नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने 8 घंटा धंधा किया, भैया 1 घंटा हमने स्वाध्याय किया, नहीं पड़ेगी पार। नहीं तो ये ब्रह्मचारी लोग, त्यागी लोग, मुनिराज घर छोड़ के जंगल में नंगे निगम होकर काय को बैठते, वो बात भी है। यदि चौथे गुणस्थान में इतनी झगड़े में पड़े हुए समस्या तो हो ही सकता है। मतलब दोनों में से पक्षों को समझना, इसका असली आनंद लेना है तो इसके लिए जीवन समर्पित करना पड़ेगा। और काम गृहस्थी में हो तो वो सब काम पार्ट टाइम होना चाहिए आपके। दो रोटियां कमाना पार्ट टाइम होना चाहिए, खाना पीना पार्ट टाइम होना चाहिए, रिश्तेदारी निभाना पार्ट टाइम होना चाहिए। क्या मैं कभी कभी ये कहता हूं कि अब क्या करें, रिश्तेदार आ गए थे तो बात करने लगे, इसी प्रचंड में नहीं आ पाए। अच्छा यदि आपको ऑफिस जाना होता, डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता और तुम्हारे सगे साले आ जाते तो उस दिन का ऑपरेशन नहीं करते, नहीं जाते? बोलो, अदालत में केस चल रहा था तो वकील साहब अदालत में नहीं जाते, कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहब नहीं जाते। अकेली ये साफ सफाई ऐसी है कि जिसमें कोई आ जाए, गुरुदेव दादा बोलते बहाने खोजते हैं। सास बहू से कहती है कि बहू मैं मंदिर जा रही हूं, कोई और कुछ काम तो नहीं है, प्रवचन सुनने जा रही हूं, कुछ और काम हो तो बता दो। माने कुछ काम बता दे रहे तो जाना नहीं पड़ेगा, नहीं जाने का बहाना खोजते हैं। इससे पार पड़ने वाली बात नहीं है, ये तो समर्पण की चीज है।